हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 7। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कृपा की याचना करेंगे। हृदय से संपूर्ण मलिनता का परित्याग करके और बुद्धि से समस्त भौतिक विचारों को निकाल कर कृष्ण के चरणों में अपने हृदय और मन को स्थित करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। परम सौभाग्य है कि हमें भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई इस दिव्य अमृतवाणी श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि शास्त्र कहता है गीता सु गीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तराय। क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकला हुआ शास्त्र है, तो आपको किमन्य शास्त्र विसर, दूसरे शास्त्र, हालांकि शास्त्र एक नहीं, हमारे पास चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, दूसरी स्मृतियां, श्रुतियां, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन वो सब क्या है, भगवान के बारे में है। उस सब से आपको भगवान के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर देखा जाए, देखो आपके बारे में दूसरे इतने सारे शास्त्र लिखे हों, बहुत सारी बातें, दूसरे जितने लोग बातें करें, लेकिन आपके बारे में सबसे ज्यादा किसको खबर होगी, आपको खबर होगी ना। तो उसी तरह भगवान के विषय में सबसे ज्यादा किसको खबर होगी, भगवान को पता हो। तो भगवान स्वयं बोलते हैं, ये हमारे लिए इतना सौभाग्य है कि कृष्ण स्वयं बताते हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कौन प्रिय लगता है। तो कितना मतलब कौन किसी को कौन बताता है, जैसे आप अपने बारे में किसको बताओगे, जो आपके फ्रेंड होंगे, जिनसे आप प्रेम करोगे, उसी को बताओगे ना। हर किसी को तो राह चलते को उठा के तो ये नहीं बोलोगे, देखो देखो मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मैं मुझे ये खाने में अच्छा लगता है किसी, या फिर मैं इससे प्रेम करता हूँ। हर किसी को नहीं बताओगे ऐसा, किसको बताओगे, जो आपकी बहुत ही निकट, जो आपके फ्रेंड होंगे, जो बहुत ज्यादा जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनसे जिन पे आप विश्वास करते हो, अपने सीक्रेट्स उन्हीं को बताओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इस शास्त्र में, श्रीमद् भगवद गीता में, अपने सारे सीक्रेट्स बताए अपने प्रेमियों के लिए, जिनसे वो प्रेम करते। तो हम सबका यह सौभाग्य है कि कृष्ण ने हमें चुना है अपने भगवद गीता सुनने के लिए। हर किसी के घर में भगवद गीता होती, लेकिन किसी को भी मन नहीं करता कि हम बैठ के भगवद गीता में भगवान के वाक्य कोई पढ़ते भी है ना, तो भी कुछ उनको समझ में आता नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक एक शब्द को सुनना, एक एक शब्द का उच्चारण करना, और गीता के विषय में हर चीज जैसे समझना, ऐसा सौभाग्य कृष्ण किसी किसी को देते हैं। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इस अमृत का पान करने के लिए भगवान ने हमें चुना है। वे कहते हैं, गीता सु गीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तार, गीता ही समझ लो बस, दूसरे शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उन सब में तो भगवान के विषय में कहा गया है, और यह तो भगवान ने स्वयं कहा है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, ये जो गीता है, यह जो गीता अमृत है, वो स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत है। तो फिर इसके अतिरिक्त दूसरी सारी सहायता, जो दूसरे सारे शास्त्र हैं, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इस भगवद गीता में यदि हम स्नान करते हैं, इसका अमृत का पान करते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसमें सारे जितने भी शास्त्र हैं ना, जितने भी अन्य शास्त्र हैं, उनके गूढ़ रहस्य हैं, सारे के सारे शास्त्रों के विषय में है। और दूसरा, जो दूसरे शास्त्रों में आपको नहीं मिलता, वो भी श्रीमद् भगवद गीता में आपको मिलता है, क्योंकि दूसरे जो आपके बारे में बताएंगे तो हो सकता है कुछ मिसिंग हो जाए, लेकिन आप जो अपने बारे में खुद बताते हो वो तो एकदम परफेक्ट होगा ना। तो दूसरे सारे शास्त्र भगवान के विषय में है, तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी बात भगवान की नहीं बताई गई हो, कोई ऐसी बात शेयर नहीं की गई हो, लेकिन क्योंकि भगवान स्वयं गीता में बात करते हैं, इसलिए वह सारी चीजें जो भगवान से रिलेटेड हैं, भगवान ने उनको, उन सारे रहस्यों को प्रकट किया है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। तो कितनी करुणा है भगवान की हमारे ऊपर कि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के योग्य हुए हैं। और गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संजय से एक प्रश्न किया कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, के धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र जब एकत्रित हुए कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने क्या किया। सेकंड श्लोक से संजय ने धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट किया। तो पहले बताया कि दुर्योधन जो है वो अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा कि देखो गुरु, आपने क्या किया है, द्रौपदी के बेटे को शिक्षा दी और उसकी वजह से इसने कितनी अच्छी सेना की व्यूह रचना की है। और फिर उनकी सेना में, पांडवों की सेना में क्या कौन कौन है, बोला बहुत सारे महारथी हैं जो भीम और अर्जुन के समान बहुत ज्यादा युद्ध कला में निपुण है, और अलग अलग योद्धाओं के नाम बताए। और आज दुर्योधन अपनी सेना के विषय में बताया। कल तो पांडवों की सेनाओं के विषय में बताया था श्लोक नंबर 6 तक। आज श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे, उसमें दुर्योधन जो है वो अपने गुरु को अपनी सेना के विषय में कि हमारी सेना के अंदर कौन कौन है वो बता रहे। यहाँ पर एक प्रश्न तो रेज होता है कि ये श्लोक तो दुर्योधन बोल रहा है और हमारे पास लिखा हुआ संजय उवाच, यानी कि यहाँ पर दुर्योधन उवाच क्यों नहीं लिखा हुआ। ऐसा लगता ना, बार बार मैं कह रही हूँ दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु को, दुर्योधन कह रहा है, लेकिन हमें अगर देखें तो श्लोक नंबर 2 से ही आंसर स्टार्ट हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है संजय उवाच। तो वेद व्यास जी ने डायरेक्ट से ये क्यों नहीं कहा कि दुर्योधन उवाच, क्योंकि दुर्योधन इतना अपराधी था, इतने अपराध किए थे, वेद व्यास जी उनके नाम से कोई श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में एड करना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि जब हम गीता के बारे में कहें ना कि इतने श्लोक धृतराष्ट्र ने कहे, इतने श्लोक संजय ने कहे, इतने अर्जुन ने कहे, इतने कृष्ण ने कहे, उसमें दुर्योधन का नाम नहीं हो। क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा होता दुर्योधन उवाच तो हमें ये बोलना पड़ता ना कि भाई इतने श्लोक दुर्योधन, तो एक अपराधी के श्लोक जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में वो एड नहीं करना चाहते थे। इसलिए जितने भी दुर्योधन के श्लोक हैं वो उन्होंने संजय के द्वारा कहलाए हैं और संजय उवाच लिखा है। तो आज संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन कह रहे अपने गुरु को, चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 7, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। यह श्रीमद् भगवद गीता जो अपने मुख से उच्चारण करते हैं तो कृष्ण बहुत कृपा करते हैं उनके ऊपर, हमें हमारे शास्त्र को उच्चारण करना आना चाहिए। तो मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् भवीमिति। ठीक है, वापिस से, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमिति। वापिस, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति। आखिरी दफा, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति। शब्दों का अर्थ, अस्माकं मतलब हमारे, पहले तो मैं पांडवों के विषय में बता रहा था, अब हमारे, तू लेकिन विशिष्टाया विशेष शक्ति, ये मतलब जो तान उनको निबोध, जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए, यानी कि अब मैं आपको अपने हमारे विषय, हमारे सेना के जो लोग हैं उनके विषय में बता रहा हूँ, तो कृपा करके आप जानकारी हासिल कर लीजिए। द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, और उत्तम मतलब श्रेष्ठ, जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें आप बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो। नायका यानी सेनापति, कप्तान, आप नायक हो ना, आपको पता होना चाहिए हमारे सेना में कौन कौन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मम सैन्य से, मम माना मेरी, और सैन्य से मतलब सेना के, संज्ञार्थम यानी सूचना के लिए, आपकी सूचना के लिए, अपनी सेना के, मेरी सेना के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्योंकि नायक हो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। तान ब्रवीमी ते, ब्रवी तान मतलब उन्हें, ब्रवीमी कहते मैं बता रहा हूँ या कह रहा हूँ आपको, ते आपको यानी कि दुर्योधन अपने गुरु को कह रहा है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। यहाँ पर दुर्योधन जो है, पहले तो देखो उसने बताया था ना उसको द्रोणाचार्य को कि उनकी सेना में बहुत बहुत वीर हैं, बहुत सारे वीर हैं जो कभी भी है ना सुभद्रा के बेटा है, द्रौपदी के बेटे हैं और है ना बाकी भी सारे जितने भी हैं वो अर्जुन और भीम के बराबर बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, युद्ध कला में एकदम निपुण हैं। तो फिर इसको ऐसा लगा कि द्रोणाचार्य को कहीं ऐसा ना लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे ही हम लोग सब ऐसे ही हैं। तो अभी वो बता रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी सेना में तो इतने महान वीर हैं जिनको पराजित करना संभव ही नहीं है, भले सामने कोई भी आ जाए। और आज इस श्लोक में तो बताया कि मैं आपको बता रहा हूँ और आगे जो मुख्य मुख्य सेनापति है ना जो उनके विषय में बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 8 मेरे साथ पढ़िए। भवान भीष्म कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भगवान कहते हैं आप, यानी कि डायरेक्ट उसको बोल रहे हैं ना, किसको, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं आप, और आपके साथ साथ भीष्मश्च, भीष्म पितामह क्या मतलब भी, और उसके साथ साथ यानी कि एक तो आप इतने महान योद्धा हो कि सबके गुरु आप हो, सबसे ज्यादा आप ही होशियार हो युद्ध कला में, और दूसरे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह की क्या क्वालिटीज हैं कि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, यानी जब तक चाहेगा नहीं तब तक मरेगा नहीं। और आगे कर्ण जो कि सूर्य पुत्र जो कि पांडवों के बड़े भाई भी हैं, तो उनके विषय में बता रहा है। उसके बाद कृपाचार्य जो उनके कुल गुरु थे, तथा समितिंजय यानी सदा संग्राम विजयी, जितने भी मैंने आपको नाम बताया ना अभी, आप भीष्म पितामह, कर्ण और कृपाचार्य, ये तो हमेशा विजयी होने वाले। आप चारों अगर मेरे साथ हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा हमारी हार हो। और आगे बताया अश्वत्थामा, ये द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा, उनका नाम दे रहे कि वो तो उसका बेटा था, तो जाहिर सी बात है जेड़ा बच्चा जेड़ा कान तेड़ा बच्चा, तो जितना है ना द्रोणाचार्य के पास जितना बल था, शक्ति थी, युद्ध कला था, तो उसके बेटे के पास विकर्ण, वो भी ना उनका भी नाम बता रहे हैं विक्रांत, तथा सोमदत्त के पुत्र, सोमदत्त एक राजा थे, उनके बेटे निश्चय ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनके विषय में बताएं। तो श्लोक पढ़ना सीखेंगे मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। फिर से भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। वन लास्ट, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त तथैवच। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप किसको बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य को। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सबके गुरु थे और सबसे पहले उनका नाम लिया, बोला आपसे ज्यादा शक्ति तो किसी के पास नहीं है, आपसे ज्यादा युद्ध कला तो किसी को नहीं आता, जिसने सीखा आपसे सीखा है, तो आपका मेरे यहाँ पर होना मेरी विजय की गारंटी है। और उसके बाद नाम दिया है भीष्म का। भीष्म पितामह के विषय में आप सब जानते हो, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि जब शांतनु, भीष्म पितामह किसके पुत्र थे पता है? वो देवी गंगा के पुत्र थे। महाराजा शांतनु जो कि कौरव खानदान के बहुत ही पुराने, एक बहुत प्राचीन राजा थे, वो अभी बैचलर थे, मतलब यंग थे, और जब वो एक दिन गंगा के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को चलते हुए देखा। वो उसके पीछे पीछे गए। इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी, उनको देखकर मोहित हो गए, वो दूर तक उनके पीछे पीछे गए। लेकिन वो जैसे जैसे जा रहे थे, स्त्री आगे आगे निकलती गई और आगे जाते जाते गंगा की लहरों में गुम हो गई। इतनी सुंदर स्त्री, उसको देखकर राजा का मन विचलित हो गया। वो दूसरे दिन सुबह को फिर आए और फिर उसी कन्या को देखा और उसके पीछे जा रहे थे, तो उसी तरह हुआ कि वो गंगा की लहरों में गायब हो जाती। ऐसे दो तीन दिन तक, तीन चार दिन तक ऐसे ही हुआ, होता रहा। वो बात ना कर सका, उसको खाली देखता रहा और इतना उसके ऊपर मोहित हो गया कि अब उनके विषय में कंटिन्यू सोचता रहता और उनको प्राप्त करने के लिए उसके हृदय में बहुत आसक्ति उत्पन्न हो गई। फिर राजा ने, अब जब नेक्स्ट डे उसने सोचा कि आज तो मैं इससे बात करके ही रहूंगा, क्योंकि अब उसको बहुत दिल कर रहा था उसे बात करने का, उसे अपनाने का, उससे, तो फिर है ना, उसने आज जब सुबह को कहा तो फिर उसको रोक, मतलब जैसे ही वो आगे जा रही थी तो उसको रोक लिया पकड़ के कि मुझे आपसे बात करनी है। तो गंगा ने कहा, बोला तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम गंगा है। बोला तुम्हारा नाम गंगा है? बोला हाँ मैं गंगा हूँ। तो बोला मुझे ना आपसे प्रेम हो गया है, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? तो गंगा ने कहा कि हाँ मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब राजा क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा मोहित हो गया था तो बोला कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, खाली आप मुझसे विवाह करो, क्योंकि अब आपके बगैर जीना मुझे संभव नहीं लग रहा है। तो गंगा ने कहा कि पहले मेरी शर्त तो सुन लो। राजा ने कहा शर्त सुनाने की क्या जरूरत है, बस मुझे पता है, मुझे मंजूर है ना। तो बोला नहीं पहले सुनो। तो फिर बोला चलो ठीक है सुनो। तो गंगा ने कहा कि तुम कभी मुझसे कोई सवाल मत करना, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और नहीं करूँ, ऐसा नहीं करूँ, इस तरह की कोई बात मुझे नहीं कहना। मेरी मर्जी जो आएगी वो मैं करूंगी, और अगर आपने मुझसे कभी कोई प्रश्न पूछा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो महाराजा शांतनु ने कहा ठीक है, मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करना, तुम खाली मुझसे विवाह कर लो। महाराजा शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। समय बीतता गया, उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गंगा ने पुत्र उत्पन्न होते ही उसको, पुत्र को उठाया और गंगा में डिबो दिया। महाराज को खाली पता चला, महाराज को इतनी खुशी हुई मुझे बेटा पैदा हुआ है, और वो देखने के लिए गया तो महाराज को देखने भी नहीं दिया, डायरेक्ट से गंगा में उसको बहा दिया, डायरेक्ट से ले गई। अब महाराज ने तो प्रॉमिस किया था कि कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ ऐसा क्यों कर रही हो, और मना भी नहीं करेंगे किसी चीज के लिए। तो फिर महाराज को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरा बेटा इसने बहा दिया। फिर वापस समय बीतता गया, दूसरा बेटा उनको हुआ, और दूसरा बेटा भी पैदा हुआ। उस समय भी ना गंगा उसको उठा के गंगा के अंदर डिबो कर आगे, जैसे गंगा, ये खुद गंगा जी हैं, ये जो गंगा है ना वो स्वयं गंगा जी, जो गंगा मैया है ना वही हैं। तो ऐसे करते करते छह बेटे जो है ना शांतनु महाराज के, छह बेटे गंगा ने गंगा में बहा दिए। महाराज रोज देखता तो उसको बहुत दुख होता कि कैसी माँ है, माँ है कि डायन है, कोई डायन भी अपने बच्चे को नहीं मारती, और ये जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको मार डालती है। तो फिर उसने ना बोला, अब भी अगर बच्चा पैदा होगा ना तो मैं इसको नहीं ऐसे करने दूंगा। अब समय बीतता गया और सातवां पुत्र उत्पन्न हुआ महाराजा शांतनु को। महाराजा शांतनु का सातवां बेटा जब पैदा हुआ, उसको उठाया गंगा ने और गंगा में बहाने के लिए जा रही थी, तो फिर महाराजा शांतनु ने उसको रोक दिया, बोला ठहरो गंगे, ये क्या कर रही हो तुम, नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें, तुम मेरे पहले भी 6 बच्चों को बहा चुकी हो, मैं इस सातवें पुत्र की हत्या तुम्हें नहीं करने दूंगा, खबरदार जो इसको पानी में बहाया तो दे दो मुझे मेरा बेटा वापस। तो फिर ना जब महाराजा शांतनु ने ये प्रश्न किए और उसको मना किया, तो गंगा ने उसको बताया कि इसकी वजह क्या है। अब बोला मैं, अब तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा है मैं बताऊंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। तो बोला कि ये सारे जो 6 बेटे थे ना, जो वो गंधर्व थे, इनसे कोई अपराध हो गया था तो इनको पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए श्राप मिला था। अब क्योंकि यह पृथ्वी दुखालयम अशाश्वतम है, इसलिए ये गंधर्व बहुत डर रहे थे कि हम यहाँ पर आएंगे, कितना टाइम हमें यहाँ पर रहना पड़ेगा, हम रहना नहीं चाहते, कोई ऐसी माँ हो जो पैदा होते ही मार डाले। तो फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी माँ बनो और आप है ना हमारी सहायता करो कि हम पैदा होते ही वापस से गंधर्व लोक में चले जाएं। तो उनकी यह रिक्वेस्ट को स्वीकार किया मैंने और उन्हें वचन दिया कि जैसे ही आप पैदा होगे मैं आपको गंगा में बहा दूंगी, फिर आप डायरेक्ट से गंधर्व लोक में चले जाओगे। लेकिन अब क्योंकि ये सातवां बेटा आपने मुझसे प्रश्न कर लिया, शायद इसे इस दुखों बड़े जीवन को और भी गुजारना है, यानी कि इसके दुखों का अंत नहीं हुआ अभी तक, तो फिर अब इसको क्योंकि और भी दुनिया में रहना है तो ठीक है, अब मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन ये बेटा मैं अभी आपको देकर नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा करती हूँ इसको अपने साथ लेकर जाती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, क्योंकि माँ के बगैर तो बच्चा कैसे जिएगा, तो मैं इसकी सारी परवरिश जो है वो मैं करती हूँ, इसको गुरुकुल में भेजूंगी, शिक्षा दूंगी, दीक्षा दूंगी, युद्ध कला सिखाऊंगी, फिर आपकी राज का युवराज बनने के योग्य बनाकर मैं आपके पास इसको वापस लेकर जाऊंगी, लेकर आऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। तो ऐसा कहकर गंगा अपने नव उत्पन्न किए हुए पुत्र को, जिसका नाम रखा गया था देवव्रत, उसको लेकर चली गई। और शांतनु महाराज अकेले हो गए, रोजाना गंगा के तट पर आते थे, उनको याद करते थे और सोचते थे काश वापस आ जाए। लेकिन समय बीतता गया, बहुत साल गुजर गए, 16 साल के बाद जब जो देवव्रत है वो बड़ा हो गया, उसने परशुराम जो कि बहुत ही महान आचार्य हैं, उनसे वो क्षत्रिय, पहले ब्राह्मण पुत्र थे लेकिन क्षत्रिय के उन्होंने युद्ध कला की, उन्होंने परशुराम जिन्होंने 21 बार संपूर्ण क्षत्रियों का नाश किया था पृथ्वी से, उनसे उन्होंने युद्ध कला सीखी, किसने, देवव्रत ने। अब एक दिन शाम को देवव्रत जो है ना, वो गंगा जो है वो देवव्रत को लेकर आगे शांतनु के पास, बोला ये रहा तुम्हारा बेटा, इसको मैंने हर एक चीज जो एक युवराज, यानी कि युवराज मतलब भावी राजा, आपके बाद जो राजा बनेगा तो एक युवराज के अंदर जितनी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज मैंने इसके अंदर डाली है, अब आप लोग अपना बेटा संभालो। महाराजा शांतनु अपने पुत्र को देखकर भूले नहीं समाए, इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना मतलब इतनी सारी युद्ध कला उसको आती थी, सारे शास्त्रों में निपुण पुत्र ऐसा पाकर वो धन्य हो गए, और ऐसा संसार में अब तक कोई पुत्र नहीं था, इतने गुण थे भीष्म पितामह के अंदर। फिर अब क्योंकि महाराजा शांतनु के पास कोई पत्नी नहीं थी, एक दिन वो फिर से जा रहे थे गंगा के किनारे पर, तो एक सत्यवती नाम की कन्या कश्ती चला रही थी, तो महाराज को उस पार जाना था, तो सत्यवती को बोला मुझे उस पार लेकर चलो। तो उस दिन ना वो कश्ती में बैठा और इतनी सुंदर थी वो स्त्री कि उसको देखकर मोहित हो गया राजा, और उस तरफ जब गया तो सत्यवती ने बोला महाराजा वो तट आ गया, आप उतरो। तो महाराजा ने कहा नहीं, मुझे इस तट पर नहीं उतरना है, मुझे वापस से वो वाले तट पर लेकर चलो जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो सत्यवती जो है वो उसको उस तट पे लेकर गई, बोला अब वो वाला तट आ गया, अब यहाँ पर उतरो। तो महाराजा ने कहा नहीं, यहाँ पर नहीं उतरना, मुझे वापस से वो वाले दूसरे तट पे लेके चलो। इसे करते करते सांझ हो गई और महाराजा शांतनु को कश्ती से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। सत्यवती बहुत ही सुंदर थी और वो उनके साथ रहना चाहता था। तो ना उसने बोला अब जब दूसरे तट पे आए तो आखिर में महाराजा शांतनु ने कहा मुझे यहाँ नहीं उतरना, मुझे आपके घर जाना है। तो मेरे घर क्यों? बोला बस मुझे आपके पिताश्री से बात करनी है, मुझे आपके घर लेकर चलो। तो सत्यवती ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ, चलती हूँ। फिर सत्यवती महाराजा शांतनु को अपने घर लेकर गई और वहां पर जो सत्यवती के पिताश्री थे उनको महाराजा शांतनु ने कहा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो जो सत्यवती के पिता थे ना उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ नहीं करूंगा। तो बोला क्यों नहीं करोगे? बोला मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या का जो बेटा है, बेटा जो होगा, भावी बेटा, संतान उत्पन्न होगी, वो राजा बने। लेकिन आपके साथ शादी करके उसका बेटा तो राजा बनने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा। तो बोला कि राजा, जाहिर सी बात है, अब राजा कौन बनने वाला था? देवव्रत बनने वाला था, क्योंकि उसका अधिकार था, वो पहला युवराज था, उसने और एबिलिटी थी। क्योंकि पहला ये होता था ना कि राजा के पहली संतान यदि गुणवान होती है तो उसी को है ना राजा बनाया जाता है, पहले बड़े बच्चे के ऊपर अधिकार होता है। अब क्योंकि सत्यवती का जो संतान होगा वो तो छोटा होगा तो उसको तो अधिकार नहीं मिलेगा ना ये। तो फिर है ना बोला ठीक है, मुझसे शादी, मुझे, मैं अपनी खुशी के लिए अपने बेटे के हक को नहीं मार सकता। मैं बीच यानी ये देवव्रत है ना उसका अधिकार है राज सिंहासन पर बैठना, मैं उनका अधिकार नहीं छीन सकता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है आपकी बेटी से। तो ऐसे कहकर शांतनु चले गए घर। लेकिन घर पर जब वो चले गए तो उसे बार बार ये सत्यवती याद आ रही थी कि कितनी सुंदर थी, अब उसके माइंड से निकल ही नहीं रही थी और है ना बहुत चिंतित हो गए थे। लेकिन वो देवव्रत के साथ कोई भी अन्याय नहीं करना चाहते थे। जब देवव्रत ने अपने पिताश्री को चिंता में देखा तो उसे लगा कि कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से मेरे पिताश्री बहुत चिंतित हैं। उन्होंने पिताश्री से पूछा भी लेकिन शांतनु महाराज ने देवव्रत को कुछ नहीं बताया। फिर जो कुछ सेनाओं के साथ गए थे उसे पूछा दूसरे लोगों से, महाराज कल कहाँ गए थे, यानी कि पूरा कल का दिन महाराज कहाँ गए थे, किधर से ये जो टेंशन उसके मन में आई है वो किधर से आई है। तो बहुत बहुत खोज करने के बाद, क्योंकि देवव्रत के पास बहुत बुद्धि थी, उन्हें एटलीस्ट पता चल ही गया कि महाराजा क्यों दुखी हैं। देवव्रत गए सत्यवती के घर पे जहाँ पर उनके पिताश्री से बोला कि आपने महाराजा शांतनु के साथ अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह करने से क्यों मना किया। तो उन्होंने वजह बताई कि भाई हम चाहते हैं कि सत्यवती का बेटा राज करे, लेकिन आप राज करोगे ना तो आपके पिताश्री आपकी वजह से दुखी हैं, कि अगर आप ना होते तो जाहिर सी बात है सत्यवती का बेटा जो है ना वो राज करता, तो अब आपकी वजह से तुम्हारे पिताश्री दुखी हैं। तो ये जब भीष्म पिता सॉरी देवव्रत ने जब ये सुना तो उनको बहुत दुख हुआ कि मैं बच्चे को तो अपने पिता की खुशी का कारण बनना चाहिए और मेरे पिताश्री मेरी वजह से दुखी हो रहे हैं। तो बोला नहीं, आप है ना सत्यवती के साथ मेरे पिताश्री की शादी करा दो, मैं राज पर नहीं बैठूंगा, जो भी इनका बेटा होगा ना उनको ही राज पर बिठाएंगे। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सत्यवती की संतान को ही राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा। तो फिर उनके पिताश्री ने बोला, सत्यवती के पिताश्री ने बोला, ये तो तुम कह रहे हो ना, कल तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम्हारा जो बेटा पैदा होगा वो बोलेगा कि मुझे राज पर बैठना है, क्योंकि आपका बेटा होगा तो जाहिर सी बात है इतना शक्तिशाली होगा और आप उसकी फेवर भी करोगे। आप बोलोगे मैंने ये बोला था कि मैं राज नहीं करूंगा, मैंने ये थोड़े बोला था कि मेरा बेटा राज नहीं करेगा, कल को सत्यवती की संतान से तुम्हारा बेटा जीत जाएगा और उसको है ना राज मिल जाएगा और मेरी बेटी को बेटी की संतान को राज नहीं मिलेगा। तो जब देवव्रत ने यह सुना कि ये सिचुएशन है तो उन्होंने एक बहुत ही भीष्म प्रतिज्ञा की, बहुत ही भीषण, बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। मतलब कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी बच्चा नहीं होगा। जब ना मैं विवाह करूंगा ना बच्चा होगा तो फिर तो कोई भी नहीं, आपकी सत्यवती की संतान के बीच में कोई नहीं आएगा ना, बस उसी के बच्चे होंगे। तो मैं तो वैसे ही प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं राज कभी नहीं करूंगा। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। मेरा कर्तव्य है कि उसकी सेवा ही करना, अब मेरा कर्तव्य जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा, भले वो कौन भी हो। ये इन्होंने ये प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को बाउंड कर दिया। इसीलिए देखो धृतराष्ट्र की साइड में अभी भी वो दुर्योधन की साइड में लड़ाई कर रहे हैं ना, वरना दुर्योधन जो है वो अपराधी था और भीष्म पितामह तो धर्मपति थे, बहुत ज्यादा धर्मात्मा थे, लेकिन उनको इस प्रतिज्ञा की वजह से इनका साथ देना पड़ रहा था, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी बैठेगा उसका साथ दूंगा मैं। तो फिर है ना, अब क्या हुआ, जब शांतनु ने ये सुना कि मेरे बेटे ने यह प्रतिज्ञा की है कि कभी शादी नहीं करेगा और कभी बच्चे नहीं पैदा करेगा और हमेशा जो भी सिंहासन पर बैठेगा उसके साथ रहेगा, तो ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे वजह से मैंने कितना स्वार्थी पिता है जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे की पूरी जिंदगी को बलि चढ़ा दिया। यानी कि अब उनकी जीवन में भीष्म पिता, अब है ना देवव्रत जो है, जब इनकी यह प्रतिज्ञा सारे देवताओं ने सुनी, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने की नहीं अब तक। देखो ब्रह्मचर्य रहना कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे लोग भी ब्रह्मचर्य रहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा में स्पेशलिटी क्या थी कि दूसरे जो ब्रह्मचर्य होते हैं ना उनके पास इतना साधन ही नहीं होता है जिसमें वो फंस सके, लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा जो थी वो प्रिंस थी। उनको रहना था राजा के साथ, मतलब राज महल में रहना था और रहना था सन्यासी की तरह। ऐसे रहना बहुत कठिन है। देखो अगर साधन नहीं हो ना तो उनकी तरफ हमारा आकर्षण नहीं जाता, लेकिन संपूर्ण जब साधन रखे हुए हो और फिर हम उसको स्पर्श नहीं करते हैं, उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, ये बहुत ही महान त्याग है। तो भीष्म पितामह का त्याग बहुत महान था, क्योंकि उन्हें रहना भी तो राजमहल में था ना, ताकि तभी तो वो है ना जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा उसकी सहायता कर सकेगा। तो फिर है ना, यह जब इनकी यह प्रतिज्ञा देवताओं ने सुनी, सब ने जितनी दिशाएं सब लोगों ने इनके ऊपर फूल बरसाए और इनको उस दिन से जिस दिन इन्होंने ये प्रतिज्ञा की उनको भीष्म का नाम दिया गया। पहले देवव्रत नाम था ना, फिर इनको भीष्म का नाम दिया गया, यानी कि इतनी कठिन तप प्रतिज्ञा करने वाले, भीष्म का मतलब होता है बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा करने वाले, उस नाम से इनको पुकारा गया। और जब शांतनु को यह पता चला कि मेरे बेटे ने यह प्रतिज्ञा ली है, तो शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को एक वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक कि तुम खुद नहीं चाहोगे। कितना ये अच्छा वरदान है अगर देखा जाए तो, जब भी दिल करे तभी है ना हम वो मर सकता था, यानी कि कुछ कभी भी हो सकता था, कभी भी उस टाइम पर भी मर सकता था। अगर उसके अभी देखो क्या हुआ था, दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की लाज मतलब वस्त्र हरण करने का कोशिश की जा रही थी, तो उस टाइम पर भी वो मर सकता था, लेकिन इस आशीर्वाद को सुनने के बाद जब शांतनु ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि जब तुम चाहोगे तब मरोगे, तब उन्होंने एक दूसरी प्रतिज्ञा कर ली। ये प्रतिज्ञा बहुत ही कठोर उन्होंने की। वो उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक मरने की इच्छा नहीं करूंगा, जब तक मैं देख नहीं लेता कि हस्तिनापुर का सिंहासन एकदम सुरक्षित हाथों में है, एकदम सुरक्षित है, बिल्कुल कोई अभी कोई खतरा नहीं है उसको, एकदम बिल्कुल सही सब कुछ जा रहा है, धर्म जो है उसकी स्थापना हो गई है हस्तिनापुर में, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा तब तक मैं खुद मरने की प्रतीक्षा, मरने के लिए नहीं सोचूंगा, खुद को मरने की इच्छा नहीं करूंगा। तो अब ये दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी जिंदगी इन दो प्रतिज्ञाओं की से जूझते रहे, एक तो है ना कभी शादी नहीं की ब्रह्मचर्य रहे, और दूसरा ये कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर पूरा धर्म का वास नहीं होता तब तक मैं मृत्यु नहीं मृत्यु की गोद में नहीं सोऊंगा। फिर उनको इतने सारे तीर लगे थे, 100 तीर उनके शरीर पे चुभे हुए थे, लेकिन वो जान अपनी नहीं छोड़ रहे थे, मर नहीं रहे थे, ये सोचकर कि अगर जब तक ना हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित नहीं है तो इतनी पीड़ा में भी वो जी रहे थे। तो आप इन भीष्म पितामह के विषय में बता रहे हैं कि स्वयं आप भीष्म पितामह कर्ण, अब उसके बाद कर्ण का नाम आया है, कर्ण को आप सब जानते हो कि ये किसका बेटा था, ये कुंती महारानी और सूर्यदेव की संतान थी। जब एक बार कुंती महारानी जब तक उनकी जब प्रथा थी वो और उनका विवाह नहीं हुआ था, वो अपने घर में ही थी, तो एक बार उनके यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए। उन कुंती महारानी ने उनकी बहुत ही अच्छी सेवा की, तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती महारानी को यह वरदान दिया कि जब भी आप किसी देवता की आराधना करोगे, एक मंत्र दिया कि ये जब मंत्र पढ़ोगे आप किसी भी देवता को आवाहन करोगे तो वो देवता आपके पास आ जाएगा। तो ना ये कहकर दुर्वासा मुनि तो चले गए, लेकिन कुंती महारानी जो थी उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे होगा, मंत्र पढ़ूंगी और देवता आ जाएगा, ये तो कैसे हो सकता है। फिर वो बार बार है ना सोच रही थी कैसे होंगे देवता, मेरे को देखना चाहिए कहना, और उन्होंने ये कहा था कि देवता आएगा और आपको एक पुत्र देके जाएगा, ऐसे बोला, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जानते थे कि आगे जाकर उनको इस मंत्र की जरूरत पड़ेगी, तो फिर इसलिए उनको यह वाला मंत्र दिया था। अब वो क्योंकि बैचलर थी फिर भी उनको यह मंत्र की परीक्षा लेने का मन कर रहा था, मंत्र की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मंत्र साधु इनकी कभी, और मंत्र साधु और भगवान इनकी कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बहुत ही हमें कठिन मतलब इसका हो सकता है परिणाम। तो मंत्र जो है ना इसने उच्चारण किया, सूर्यदेव का आवाहन किया, सूर्यदेव प्रकट हो गए और सूर्यदेव उनको एक पुत्र देकर चले गए। अब वो बैचलर थी, कन्या थी, कुंवारी कन्या बेटे को कैसे रख सकती है अपने साथ, संसार लांछन लगाएगा उनके पिता के ऊपर है ना, लांछन लगेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस बेटे को पानी में बहा दिया, और पानी में बहा, और ये क्योंकि सूर्य पुत्र था, सूर्य देवता का पुत्र था, तो ये जन्मा ही कवच और कुंडल लेकर था, यानी कि उनके शरीर पर एक कवच और कानों में कुंडल पहने हुए थे। तो इन्होंने पानी में बहा दिया, फिर अना एक देवव्रत माने एक शूद्र थे, उन्होंने इसको पाला और उनकी पत्नी का नाम था राधे, उनके पास कोई संतान नहीं थी तो कर्ण को उन्होंने ही पाला। फिर जब ये बड़े हुए, अब ये शूद्र के घर में पढ़ रहे थे तो बड़े हुए, तो ये भी गए थे द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए, लेकिन द्रोणाचार्य ने बोला मैं शूद्रों को नहीं देता शिक्षा, मैं शूद्रों को शिक्षा नहीं देता हूँ, आप निकल जाओ मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा। तो कारण जो है वो उसको बहुत दुख हुआ कि अब मैं, क्योंकि वो था क्षत्रिय, उसके मन में था कि मुझे युद्ध कला सीखनी है, तो उसके बाबा ने जो शूद्र था ना उसने उसको बोला कि अब मैं क्या करूं, को सिखा ही नहीं रहा है, तो उसने क्या किया ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। कारण ने ब्राह्मण के रूप धारण करके परशुराम से शिक्षा ली, वही परशुराम जो भीष्म पितामह के गुरु थे उनसे शिक्षा ली युद्ध की, लेकिन उनको बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि अगर वो बोलता कि मैं शूद्र हूँ तो शूद्र को है ना नहीं देते थे वो लोग शिक्षा, ना युद्ध की शिक्षा नहीं दी जाती थी शूद्र को। तो ब्राह्मण एक दिन उसको पता चल ही गया कि ये शूद्र है, तो फिर है ना ये शूद्र नहीं, उनको ये पता चला कि वो क्षत्रिय। एक बार क्या हुआ, परशुराम उनकी करण की गोद में सो रहे थे, यानी कि गुरु महाराज को अपनी गोद में सुला के वो सहला रहे थे उनके बालों को इस तरह, तो एक बहुत ही जहरीला कीड़ा आया और कीड़े ने करण को काटा, वो कीड़ा उसको काट रहा था, काटे जा रहा था, लेकिन क्योंकि उसके हाथ जो है वो गुरु महाराज के ऊपर थे और वो हटाते तो गुरु महाराज की नींद खराब होती, तो वो हिल नहीं रहे थे, कीड़ा काट रहा था, ब्लडिंग हो रही थी, जोर जोर से ब्लडिंग हो रही थी, लेकिन वो उस कष्ट को बर्दाश्त कर रहे थे सिर्फ ये सोचकर कि मेरे गुरु महाराज की नींद ना खराब हो। इतनी थोड़ी देर के बाद जब गुरु महाराज की आंख खुली, देखा इतना सारा ब्लड निकला हुआ था, तो उसने देखा कि खून कहाँ से आया, तो फिर देखा कि करण को एक कीड़ा काट रहा था, तो उसने देखा कि इतना बर्दाश्त किया इसने, इतनी देर तक इसको कीड़ा काट रहा था, इतना जहरीला उसको, इतना पेन, इतना दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। तो फिर है ना उसने उसको पता चल गया कि शूद्र में या ब्राह्मण में, अब ये ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण बन के आया था ना, बोला ब्राह्मण में इतना ज्यादा सहन नहीं होता है, ये क्षत्रिय है। अब बोला आप क्षत्रिय हो, आपने मुझसे झूठ बोला है कि आप ब्राह्मण हो, तो जब आपने मुझसे झूठ बोलकर ये शिक्षा ली है तो जिस टाइम पर आपको इस शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत होगी ना, उस टाइम पर आप इस शिक्षा का उपयोग नहीं कर सकोगे। तो ये श्राप मिल गया करण को, एक तो पहले से पैदा हुआ, माँ भी नहीं मिली बचपन से, और शूद्रों के पास रहा, और गुरु से जब शिक्षा ली तो उसने भी बोल दिया। तो ये करण की ना दुर्भाग्य की कहानी। लेकिन उसके बाद क्योंकि दुर्योधन के साथ इसकी दोस्ती हो गई, दुर्योधन ने इसको अंग का राजा बना दिया। अब दुर्योधन ने इसको क्षत्रिय, क्योंकि ये शूद्र बनकर रह नहीं सकता था, इसके अंदर क्षत्रिय ब्लड था, ये कुंती का बेटा था और सूर्य देव का था, तो इनको है ना एक राज मिल गया, तो दुर्योधन ने इसको पहचान दी अंग राजकरण के नाम से। तो उसने अपनी जिंदगी दुर्योधन के नाम पर लिख ली कि चाहे मैं जब भी तुम्हारी तरफ कोई शस्त्र आएगा उसको मैं अपने सीने पर लूंगा, और मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा, कभी मतलब मेरे जीते जी आपको कुछ नहीं होने वाला। तो यह करण जो है उसके विषय में बता रहे हैं यहाँ पर कि एक तो आप हो, सबके गुरु हो, दूसरा भीष्म पितामह, तीसरा करण, फिर कृपाचार्य उनके कुल गुरु, फिर अश्वत्थामा, बोला ये सारे लोग जो हैं वो मुझे हारने देंगे ही नहीं, क्योंकि इनके होते हुए मेरी कभी हार नहीं हो सकती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। अद्वितीय यानी कि उनके जैसा कोई नहीं, ना द्रोणाचार्य के जैसा, ना दुर्योधन, ना ही भीष्म पितामह के जैसा, ना कर्ण का जैसा, ना ही कृपाचार्य के जैसा। तो ऐसे वीरों के नाम के विषय में बता रहे हैं कि ये हमेशा विजय होते रहते हैं। विकर्ण, अभी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जो है वो विकर्ण का परिचय दे रहे हैं कि विकर्ण दुर्योधन का भाई था, यानी कि दुर्योधन के 100 भाई थे, उनमें विकर्ण था एक, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिस द्रोणाचार्य की हम बात कर रहे थे उनके पुत्र थे अश्वत्थामा, और सोमदत्त या भूरीश्वरा बाहलिकों के राजा थे, यानी कि वो भी एक राजा थे बाहलिकों के, और राजा के पुत्र थे। कर्ण अर्जुन का आधा भाई, क्योंकि आधा भाई क्यों, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडव के साथ विवाह होने से पहले उत्पन्न हुआ था। किनकी कृपा से? सूर्यदेव की कृपा से। वो सूर्य पुत्र था और है ना अर्जुन का भाई हुआ, क्योंकि माँ तो एक ही थी। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को बिहाई गई थी, यानी कि कृपाचार्य जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उनके कुल गुरु थे, उनके साथ उनकी एक बहन ट्विंस पैदा हुए थे, उनका नाम था कृपी, और कृपी जो है वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी। तो इनके विषय में श्री प्रभुपाद जी थोड़ा संक्षिप्त में बता रहे हैं। साथ रहिएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।